ओके गाइस, माय नेम इज फिजान एंड आई एम अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट।
और मेरा नाम शहवार अहमद है और मैं एक लेजर साइंटिस्ट हूँ।
और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेक लॉग पॉडकास्ट नंबर 20, 20वां पॉडकास्ट। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैचलर्स के बाद यहाँ वहाँ निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोग जर्मनी आ गए, और बहुत सारे लोग यूएस भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। ये कुछ ऐसी गिनी चुनी मेजर डेस्टिनेशन हैं जो लोग टारगेट कर रहे होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए कि आपने किस तरीके से जो है स्पेशली यूएस जाने का जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे दानिश खान। तो दानिश खान ने अपना मास्टर्स जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से ही जो है वो एमफिल किया, और वहाँ से एमफिल करने के दौरान ही इन्होंने जो है वो एनडी यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाना शुरू किया। और एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर फिज़िक्स के कुछ कोर्सेज जो हैं वो स्पेशलाइज कोर्सेज जो हैं इन्होंने वहाँ पर ऑफ़र किए। उसके साथ साथ ही फिर इन्होंने अपनी यूएस की जर्नी का भी जो है वो स्टार्ट किया, और अभी जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के अंदर जो है वो अपना पीएचडी कर रहे हैं अप्लाइड फिज़िक्स के अंदर। तो वेलकम दानिश भाई, कोई चीज़ रह गई हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम शेरी। First, thank you so much for giving me this opportunity to interact with the Pakistani students. और जैसा कि फैजान आपने mention किया है कि और शेरी ने start में बताया कि yes, it is true and it is a fact that हम पढ़ाई करने के बाद bachelor's या master's करने के बाद जो है we try to हमारी कोशिश होती है, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम अपनी तालीम के लिए जस्तजू करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से निकल कर बाहर जाकर जो है वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। रही बात इंट्रोडक्शन की, तो आपने काफ़ी अच्छा इसको काफ़ी अच्छा मेंशन किया है मेरी प्रोफाइल को। सो आई डिड माई बैचलर्स इन फिज़िक्स फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन 2010. And then afterwards, I got enrolled in the MPhil program, which is Masters of Philosophy in Physics in 2012. Is dauran jo hai, I was working as a teaching assistant from 2012 to 2014. I worked as a teaching assistant there in the Karachi University Department of Physics. And then from July 2014 onwards, up until now, I still have the job in the NED University of Engineering and Technology. और 2016 में जाके यस आई कंप्लीटेड माय एमफिल डिग्री एंड आई जस्ट कंटिन्यू टू टीचिंग देयर एट द एनडी यूनिवर्सिटी। और 5.5 सालों में आई टॉट गॉड नोज हाउ मेनी, यू नो, सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज टू अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ना कि सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट के बल्कि अदर देन फिजिक्स ऑल्सो इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको आप दोनों इंजीनियर्स हैं तो आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी जिंदगी में पीछे नहीं छोड़ता। इनफैक्ट व्हाट यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ, आपको पता स्टिल यू गाइस आर योरसेल्फ एसोसिएटेड विद फिजिक्स नाउ।
तो मेरे साथ तो थोड़ा सा चेंज ऑफ सिनेरियोज है कि मैं इंजीनियरिंग से निकल के फिजिक्स की तरफ आया हूँ तो मैं तो काफी फिजिक्स से कनेक्टेड हूँ।
तो फिजिक्स तो ऐसी फील्ड है कि मतलब हर जगह पे ही पाई जाती है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ और फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता हूँ, तो जिस सिलिकॉन है वहाँ पर पूरा सेमीकंडक्टर जो है वो पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है आईसीज का, फिर उसके बाद जो पिन आउट्स हैं, जिस किस तरीके से कनेक्ट होना है उसकी एक अलग फिजिक्स है। सही है, इवन जब लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और प्रोग्रामिंग भी ट्रांजिस्टर के ऊपर होती है और ट्रांजिस्टर का जो वेफर होता है उसकी पूरी जो है वो एक फिजिक्स है। तो फिजिक्स से बचा नहीं जा सकता, ये तो मतलब एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो आपका किस तरीके से आना हुआ फिजिक्स की तरफ, मतलब कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ?
आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि कहा जाता है वाज इट बाय चॉइस और वाज इट बाय चांस। सो इन माय केस इट वाज टोटली बाय चांस, कोई ऑप्शन नहीं था। तो I ended up physics, haan, shuru mein in the freshman year of my undergraduate studies. It was difficult, physics asaan subject nahi hai. I got a lot of support and motivation from my professors at the Karachi University. And they all pushed me and they supported me. They guided me actually well, and also my seniors. And then I just decided one question jo kafi log shuru mein poochte the was that ke, what are you going to do with your degree? What is the scope of physics? Jo ke sahi bhi tha ek sawal, kyunki aap logo ko bhi pata hai Pakistan mein hamare yahan either we go for engineering or for medical sciences, doctor. Baki jo fields hoti hain math, science, chemistry, oh sorry, physics, chemistry, geology, in sari studies ko itna zyada pursue nahi kiya jata because of the limitations of career choices. Jo ke sahi bhi hai, hamare bahut, or sorry, I forgot to mention business also. BBA bhi karte hain, BCom karte hain, commerce side pe jate hain. So us waqt, yes, 2007 mein when I started my bachelor's in physics, a lot of people in my family and friends circle, they asked me like, what are you going to do with your physics degree ultimately? Or ek jo cheez thi wo yahi thi ke, yes, you're at the end of the day you are just going to be a school teacher. So and nothing is wrong with that too. I mean, when I completed my bachelor's degree, jo pehli job thi meri, that was at the Army Public School and College in Karachi, and I taught there for one whole year. And honestly, Sherry and Fazan, jo ab tak ka jo pura 10 saal ka jo career hai usme wo jo job thi na meri, school teaching ki job, I miss that. Wo jo 10th graders ko jo padhane ka jo experience tha, I think that was one of the most career wise one of the most beautiful experiences of my life.
Yahan pe ek cheez miss kar jate hain hum log na, khaas karke school teacher ki kya job sahi job nahi hai, agar ek bande ne, ek ladke ne, ek ladki ne apna career goal ye banaya hua hai ki usne academics ki taraf jana hai, usne padhana hai, usne ho sakta hai academics mein research bhi hoti hai, dusri side bhi hoti hai. मतलब अगर मैं इन जनरल सिनेरियो की बात करूं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन क्या स्कूल टीचिंग की जॉब अच्छी जॉब नहीं है? तो पाकिस्तान में सबसे अजीब सी बात है, हम अपनी पॉडकास्ट में भी अक्सर इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि आइदर इंजीनियर या डॉक्टर या बिजनेस, ये तीन फील्ड्स के अलावा कोई सोचने की कोशिश करता नहीं है. उसकी वजह ये होती है कि उनको ये लगता है कि जब इंजीनियर बन जाएगा तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, मतलब वो वेल सेटल्ड होगा. ऐसी बात नहीं है. जब सारे लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे हमारी सोसाइटी पे, तो बाकी काम कौन करेगा? तो यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट भी है. लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, आपसे क्वेश्चन भी करूंगा इस बारे में कि जब आपने फिजिक्स में स्टार्ट लिया और उसके बाद आप मास्टर्स की तरफ गए, तो क्या फिजिक्स की भी तो कितनी सारी जॉब्स हैं पाकिस्तान में, तो आपने उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश की, मतलब इन इंडस्ट्री?
बिल्कुल. इनफैक्ट जो शुरू में मेरा एक माय इंक्लिनेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हैज ऑलवेज बीन टुवर्ड्स एकेडेमिया, बट यस, आई रिमेंबर आई डिड अप्लाई फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, और फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्टिंग टू कैन अप टू PCSIR सुपारको. आई मीन हमारे पास बहुत सारे, इस्लामाबाद में काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनुअल बेसिस पे फिजिक्स ग्रेजुएट्स की हायरिंग होती रहती है. बात मेरे ख्याल से जो, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पीकिंग लार्जली ऑफ पाकिस्तान, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोगों को शऊर नहीं है मेरे ख्याल से, शायद इस वजह से लोगों को, क्योंकि लार्जली स्पीकिंग बात वही आ जाती है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और कॉमर्स, ये तीन मेजर फील्ड्स हैं. जब एक स्टूडेंट अपना इंटर करता है वहाँ पे, तो उसके पास, उसको ये तीन ऑप्शंस ही दिखते हैं आगे अपना करियर परस्यू करने के लिए. तो आई थिंक अवेयरनेस और करियर काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें लैक करती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मासेस में इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, फिजिक्स के करियर गोल्स को लेकर, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली कि, बट देन आई स्पोक विद माय प्रोफेसर्स और दे बिकेम माय करियर काउंसलर एट द कराची यूनिवर्सिटी, एंड देन दे गाइडेड मी कि व्हाट आई कैन डू विद माय डिग्री अहेड इन लाइफ.
नाइस.
अब यहां से जो है ना, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा जो हमारा एक हमने एक लाइन लिखी थी एज अ टॉपिक, रोड टू यूएस. तो आप कि मतलब ये किस तरह हुआ? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपको पता कैसे लगा कि यार एक यूएस भी एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन क्वेश्चन है. दूसरा, प्रोसेस क्या है और किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? तो अगर आपके एक्सपीरियंस से हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि यहाँ ये हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिसको वो सर्च कर सकते हैं.
So Sherry, before doing the US, जो सबसे पहला जो मेरे पास एक PhD का और PhD की अपॉर्चुनिटी थी, that was South Korea, believe it or not. In 2016, जब मैंने अपना MPhil complete भी नहीं किया था, so क्योंकि मेरे जो supervisor थे Karachi University के Professor Dr. Zaheer, उनके you know professors के links होते हैं all around the world. So किसी ने उनको approach किया South Korea से कि भाई इस lab में laser physics से related lab थी that we have a vacancy here, and if you know somebody, you can, you know, agar aap kisi ko jante hain to. So I got that opportunity as first, but for whatever reasons, I did not go there to South Korea. Then I wanted to go to China. I was, you know, MPhil karne ke baad, I was looking all over the world to go and pursue to for the degree of PhD. Then I even applied to Germany, do dafa. बट जर्मनी का ये था कि सुपरवाइजर, जर्मनी का प्रोसेस आप लोग को ज्यादा बेहतर पता होगा. माई सुपर जिस सुपर प्रोफेसर को मैंने कॉन्टेक्ट किया था, ही वॉन्टेड मी टू कम देयर एंड डू माई मास्टर्स अगेन एंड देन गेट एनरोल इन PhD. अब वो मुझे उसकी वजह नहीं पता कि उसको वो क्यों चाह रहा था कि मैं मास्टर्स दोबारा करूँ जर्मनी आके एंड देन उसकी लैब में एज अ PhD स्कॉलर PhD रिसर्चर ज्वाइन करूँ. And then finally, or US, jab bhi aata tha meri taraf, I would always be like, yaar, US kaun jayega? US toh itna mushkil hai, aur scholarship pe toh ek le de ke ek Fulbright scholarship hai US ki, aur uske liye competition itna hota hai ke, I don't know, aap logo ko agar pata hai ya nahi, US Fulbright scholarship jo hai, wo 50, this like 50 PhD candidates from all over the Pakistan annually, on the basis of GRE score and God knows, so many factors are involved in this the whole selection process. Aur usme jo hai Fulbright scholarship mein bhi jo physics hai wo sabse niche aata hai selection mein, kyunki uski bhi strong solid reasons hain. Wajah uski hai ki America jo hai, zahir hai, agar aap Pakistan se, Iran se, China se, Russia se agar aap PhD karne physics mein aa rahe hain, to America jo hai, even India, to America itni easily aapko jo hai wo फिजिक्स के लिए एक्सेप्ट नहीं करता. उस पर भी मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं फिजिक्स में जो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर PhD इन फिजिक्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो फिजिक्स के अंदर आपको नहीं कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप जो है वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज कुछ इस तरह से हैं फिजिक्स के अंदर रहते हुए कि आपको वीजा जो है उसके मिलने का चांस जो है बहुत कम होगा. एनी वे, तो 2019 में यस, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग US universities and I took it more seriously. US ka option jo tha. The first thing is that jab aap US mein apply karne ke liye apna mind banate hain, is to select a university. Kyunki earlier, before this, what I was doing this whole time was ki bhai Google pe jaake I was just searching universities in America for PhD in physics. और आपको पता है कि वहाँ पे इंटरनेट गूगल जो है वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ सर्च रिजल्ट्स आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप उसी में गुम होकर रह जाते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करें कौन सी को नहीं. सो मेड अ स्पेसिफिक टारगेट, जैसे इन माय केस मुझे फ्लोरिडा आना था फॉर सम रीजन एंड आई सेट माय, सो आई वाज वेरी स्पेसिफिक टू द स्टेट दैट आई वांटेड टू गो टू फ्लोरिडा. तो फ्लोरिडा में देन आई सर्च के भाई कौन से बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं एंड देन आई फाइनली नैरो इट डाउन टू ओनली वन स्कूल व्हिच इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, जहां पे PhD इन अप्लाइड फिजिक्स की डिग्री ऑफर होती है. अच्छा, अगेन फिजिक्स इज ऑफर्ड ऑल अक्रॉस US, बट PhD इन अप्लाइड फिजिक्स इज ऑफर्ड ओनली इन अ फ्यू वेरी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस US. क्योंकि मैं NED में अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा रहा था, और तो मैंने कहा इससे बेहतर कोई अच्छा क्या कहते हैं ऑप्शन या मेरे पास जो है चांस नहीं होगा कि मैं अपना PhD जो है वो अप्लाइड फिजिक्स में करूँ. एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो उसने भी US काउंसलर पे वीजा ऑफिसर ने भी मुझसे पूछा था कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स, एंड उसको भी मैंने ये बताया था क्योंकि मैं एनईटी में अप्लाइड फिजिक्स एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एंड फिजिक्स, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गो एंड डू माय पीएचडी इन अप्लाइड फिजिक्स क्योंकि मैं एनईटी में अप्लाइड फिजिक्स से जुड़ा हूं। जी
दानिश भाई, मैं यहां पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं जैसे जर्मनी में एक वेबसाइट है dart.de, इस तरह की कोई वेबसाइट है अमेरिका के जहाँ पे आपको एक कम्युलेटिवली सारी यूनिवर्सिटीज का डेटा मिल जाए, कोई एक ऐसी वेबसाइट है या तो अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के अलावा? और दूसरी चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा, बहुत देर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ये है कि विच स्कॉलरशिप यू गॉट, और मेरे ख्याल में ये मेरे सवाल में भी ऐड था, तो उसकी तरफ हम आ जाएंगे अभी कंटिन्यूएशन में।
ओके ऑलराइट, एज फार एज माय नॉलेज, जितना मुझे पता है वेबसाइट्स हैं, बट अगेन आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो द ओनली स्कॉलरशिप दैट आई नो ऑफ इज द फुलब्राइट स्कॉलरशिप यूएस के लिए, और फुलब्राइट स्कॉलरशिप की यस वेबसाइट है, आई थिंक इट्स यूएस आप सर्च कर सकते हैं,
वो तो बहुत आसानी से मिल जाएगा।
या यूआरएल एग्जैक्ट यूआरएल नहीं है, लेकिन आई डिड अप्लाई फॉर यूएस फुलब्राइट स्कॉलरशिप टू इन 2019 बिफोर अप्लाइंग इंडिपेंडेंटली to this university, University of South Florida. I went ahead and applied for US Fulbright scholarship. One thing jo ek bahut achhi hai about the American education system, pure application process mein, it's all uniform. Whether you are applying for US Fulbright scholarship or whether you are applying independently for any school in the United States, the whole system is very uniform. जो आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए चीजें जमा करते हैं वही चीजें आपको चाहिए किसी और अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए।
तो
थोड़ा सा कल्चरल किस्म का जो है वो क्वेश्चन आ गया।
मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, लेकिन वो पॉइंट बीच में रह जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप कौन सी स्कॉलरशिप पे आए और क्या आप स्कॉलरशिप पे आए या आपने जो है थ्रू प्रोफेसर प्रोसेस किया सारा।
ओके फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, हुमैरा जो है वो मेरी क्लास फेलो थी अंडर ग्रेड में, और इन्होंने चाइना से जहाँ तक लास्ट टाइम मेरी इनसे बात हुई थी, शी वॉज इन चाइना डूइंग पीएचडी देयर, सो आई होप यू बी डूइंग गुड हुमैरा, नाइस टू नो दैट यू आर वॉचिंग इट लाइव, बहुत खुशी हुई आपका मैसेज पढ़ के। और स्कॉलरशिप जो मेरी स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी फंडेड है, जो साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की तरफ से फंडेड प्रोग्राम है। वंस यू गेट एक्सेप्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर बाय एनी स्कूल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वंस यू आर एक्सेप्टेड देन इट्स ऑल फ्री, ऑल पीएचडी प्रोग्राम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर फ्री, आपको बस एक्सेप्टेंस मिलने की देर है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, देन यू आर ऑल सेट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल things.
तो acceptance के लिए इसका procedure ये है कि आप पहले state को जो है ना search करें कि आपने कौन सी state जाना है। मैं थोड़ा सा summarize कर रहा हूँ, आपने कौन सी state जाना है, उसके बाद आप उस state के अंदर different universities explore कर सकते हैं जो coherently आपके research goals के साथ या आपके future plans के साथ match करती है। उसके बाद फिर आप उनकी website के through ही सारी information और डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन सारी निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर तो ये चीज क्लियर हो गई कि आप यूएस किस तरह से आए। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी दूसरी साइड की तरफ जाने की कोशिश करूंगा जो एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है इस सारी जर्नी का, कि आप बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखी फिजिक्स में रहने की वजह से, फिर जब आप टेक्नोलॉजी की मेनली तरफ आए कि आपने अप्लाइड फिजिक्स चूज की, तो अप्लाइड फिजिक्स में तो ऐसा नहीं होगा ना कि जैसे हम नॉर्मली समझते हैं लेमन टर्म्स में कि एक बंदा अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी करने जा रहा है, उसने वहां पे भी जाके एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज किया हुआ होता है। तो वो अगर आप बताएं कि आपका वो टॉपिक क्या है जो आप अप्लाइड फिजिक्स में मेनली फोकस कर रहे हैं अभी।
ओके शेरी, बिफोर जंपिंग ऑन टू दैट पार्ट ऑफ माय रिसर्च गोल, आई वुड लाइक टू गो थ्रू, आई हैव मेड अ लिस्ट जो
जरूर जरूर
आपके व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, उनको एक ब्रीफ मैंने समरी बनाई थी उनसे शेयर करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइक डॉक्यूमेंट्स, सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स डू दे नीड टू बिफोर दे अप्लाई। तो मैं उसकी समरी को क्विकली एक go through kar deta hu. So the documents that you need is the first and foremost is the GRE general score, graduate record examination, आपको ये लेना पड़ता है, टेस्ट लाजमी है. अभी इस साल बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक काफी यूनिवर्सिटीज ने जो है वो GRE से जो है वो एग्जेम्पशन दे दी थी. इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने खुद GRE जनरल स्कोर से जो है वो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी ना दें, नहीं, जस्ट फॉर द जब आप एप्लीकेशन फाइल करें अपने एडमिशन के लिए, फॉर दैट टाइम you don't need the GRE, just only for this year due to pandemic. But afterwards, I know when things are going to get normal, inshallah, to ye dobara se jo hai phir GRE jo hai wo application ka part ban jayega. Aur GRE bhi jo hai wo do tarah ka hai, agar physics ki usme baat kare, physics ki had tak to GRE general to lazmi hai, GRE physics bhi lazmi hai.
Okay,
acha, GRE physics jo hai wo University of South Florida at the time of admission optional hai, lekin during GRE physics ka exam liye bagair you cannot get your physics degree, PhD degree in America. Ye chahe kisi bhi American university se aap PhD kar rahe hain physics mein, aapko lazmi GRE physics bhi dena hai. Kuch universities jo hain at the time of admission mangti hain GRE physics, aur kuch universities jo hain wo aap jab tak aap apna PhD kar rahe hain us dauran kabhi bhi aap GRE physics ka exam de sakte hain. फिर आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज, वो आप लोग सबको ही पता है IELTS या अमेरिका के लिए TOEFL प्रेफरेबल है, यहाँ पे TOEFL को प्रेफर किया जाता है ओवर IELTS. इनफैक्ट मजे की बात ये है, मैं अपना वहाँ पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने दोनों रखे हुए थे ऑप्शंस कि आपके पास IELTS एकेडमिक है या TOEFL है, दे वर ओपन टू बोथ. तो मेरे पास IELTS एकेडमिक था फ्रॉम पाकिस्तान, बट अमेरिकन जो है वो अमेरिकन है. यहाँ आने के बाद जो है मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज, दो माई स्कोर वो 7.5 बैंड इन IELTS, बट स्टिल यहाँ पे जो है आने के बाद दे वांटेड मी टू गो थ्रू अ वर्कशॉप टू जस्ट टू प्रूव दैट मेरी इंग्लिश जो है वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से भी सही है.
आपके साथ भी जो है ना इस तरह का सिनेरियो हो गया जैसे हमारे साथ होता है, जैसे फैजान यहाँ आया था तो फैजान को कंपलसरी एक जर्मन कोर्स करना पड़ा था. तो यहाँ जैसे जर्मनी में भी ये है, मैं बच गया था मेरी डिग्री में रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है.
तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस ले
इसका, सॉरी, इसमें ये पता है इसकी वजह ये थी शहरियन फैजान के, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज नॉट जस्ट आई एम नॉट जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ PhD, but also I am teaching here. So they wanted to make sure that my accent, my fluency, kyunki main yahan I'm teaching to American students. So which made sense to me ke, so they wanted to be sure ke jab aap main American students ke saath interact kar raha hu, to they would be able to understand me well while I'm teaching them. That was the reason. Yes, questions.
To kuch questions le lete hain saath-saath. To एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इज इट इजीली पॉसिबल टू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन PhD आफ्टर BS? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है जिसके अंदर हम डायरेक्ट बैचलर्स के बाद जो है वो PhD के अंदर एडमिशन ले सकें?
यस, सो मिकदाद जो है वो ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इन NED यूनिवर्सिटी. तो यस, मिकदाद, इट इज पॉसिबल. और इस बारे में मैंने अपने जो हमारे यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर एडमिशन कमेटी की जो हेड है प्रोफेसर, उनसे बात भी की थी पर्सनली इस सवाल के हवाले से. एंड यस, शी सेड दैट यू कैन अप्लाई राइट आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री. लेकिन अगेन, जो वो लिस्ट थी उसमें फिर आपके पास 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, और 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो भी क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट. लाइक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि खुद लिखते हैं एंड देन दे गेट इट साइन बाय देयर प्रोफेसर्स, और स्टूडेंट्स एक दूसरे का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके कॉपी पेस्ट भी कर रहे होते हैं, जो कि ढकी छुपी बात नहीं है, बट करते हैं. ये गलत है. द रीजन आई एम हाईलाइटिंग दिस इज दैट्स रॉन्ग. हर चीज जो है उसका प्लेजरिज्म जो है वो चेक करते हैं, और वहीं पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इफ इट्स फाउंड दैट यू नो द स्टूडेंट हैज कॉपीड एंड पेस्टेड फ्रॉम समवन एल्सस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सिमिलरली मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाता है, और उसके बाद जो है आपका पर्सनल ऐसे होता है एक कि why did you choose physics as in like, जहाँ पे आपको अपना inclination from childhood to teenage life, क्या चीज़ ने, किस चीज़ ने आपको motivate किया towards science. And the last and the final step is once you have submitted all your documents, the last and final step is your interview with the admission committee professors. वो आपका लाइव स्काइप के थ्रू या जूम और व्हाटएवर उसके थ्रू आपका लाइव इंटरव्यू लेते हैं. एंड द इंटरव्यू इज लाइक अ जॉब इंटरव्यू. आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर फिजिक्स पार्ट. मैं जब मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया था तो जो कि एक घंटे का था, आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर फिजिक्स. हाँ भाई क्वांटम मैकेनिक्स पूछेंगे, हाँ भाई श्रोडिंगर इक्वेशंस पूछ लेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स पूछेंगे, आई वाज ऑल सेट फॉर दैट. बट उसके बाद जो है उन्होंने भाई पूछना शुरू किया दैट ओके व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. कोई गिवन सिचुएशन में आप फंस जाए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं. लाइक एंड देन आई रियलाइज आफ्टरवर्ड्स कि सही है, मैं पीएचडी के लिए तो अप्लाई कर रहा था, बट इट वाज यस इट्स ट्रू आई वाज गेटिंग अ जॉब हियर एंड आई एम वर्किंग एज अ फ्लोरिडा स्टेट एम्प्लॉय एंड आई एम टीचिंग टू अमेरिकन स्टूडेंट्स. सो एक फुल टाइम जॉब भी है साथ में पीएचडी के टीचिंग की. So they were doing the right job, but I was not prepared for that. So that's why I wanted to share my experience somehow. Because वो life का experience इतना था, interviews से इतने गुजर चुके थे life में, that वो उन questions को जो है वो easily मैंने tackle कर लिया था. But I was not prepared for all those.
मेरी PhD के अंदर भी सबसे एक highlighted point यही है कि जो मेरी professor है वो ये कहती है कि स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको जब कोई नई फील्ड दी जाए या कोई नई प्रॉब्लम दी जाए तो उसका सोल्यूशन फाइंड कर सके, या सबसे पहले उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड वो उस फील्ड के अंदर प्रॉब्लम फाइंड कर सके, तभी तो वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा. तो वो जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंटरव्यूज भी एक तरह से प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यूज होते हैं. उसमें आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड तो मेरे ख्याल में 20% पूछा जाता है, मेरे साथ तो अभी तक यही एक्सपीरियंस है.
Right.
और 80% पार्ट ये होता है कि वो आपको जज कर रहे होते हैं कि एज अ पर्सन आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस को मतलब किस तरह से वर्क अराउंड है. मतलब एक 3 years 4 years की जर्नी है आपकी जिसमें पता नहीं कितना कुछ क्या क्या होना है एज अ पीएचडी स्टूडेंट आपके साथ, तो वो सब आप कैसे बर्दाश्त करोगे.
तो आई वांट टू ऐड समथिंग वेरी फनी ओवर हियर. जो वो इंटरव्यू था उसमें प्रोफेसर जो वन ऑफ द प्रोफेसर्स इन द इंटरव्यू कमेटी शी आस्क्ड मी के जब उसने मुझसे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का सवाल किया, सो शी वाज लाइक के अच्छा स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ऐसा है कि हम उसको इजीली हैंडल कर जाते हैं, हम सब हमें पता है हमारी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स क्या है और उसको कैसे कोट करना है ड्यूरिंग इंटरव्यू. बॉल फंसती है वीकनेस पे आके कि भाई वीकनेस क्या बताएं आप, और वीकनेस को भी आपको इस तरह बताना होता है कि वो भी आपकी स्ट्रेंथ की तरह से निकल कर आए. एंड आई वाज टोटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन एट ऑल, बट अगेन क्योंकि इंटरव्यूज के एक्सपीरियंसेस थे और टीचिंग एक्सपीरियंसेस था, तो सब कंबाइन करके वो जहन में एक ऐसी चीज आई एंड दिस इज व्हाट आई सेड इट बिकॉज आई फाइंड इट रियली फनी एंड इंटरेस्टिंग. सो आई रियली वुड लाइक टू शेयर इट. सो दिस इज व्हाट आई सेड अपनी वीकनेस के बारे में. As a scientist or as a researcher, young researcher, you know, you feel like giving up, aapko experiment kar rahe hain aur result nahi mil raha, you keep on doing it and you're just like okay damn nahi ho raha, let's you know, you feel like giving up. And then I said, but at the same time if you read about scientists like Joule who spent 40 years of his life just to prove that you know one calorie of heat requires 4.186 joules of work done to produce one calorie of heat, 40 years of his life. And when you read about scientists like these, then I convert my weakness into a strength that no, if a scientist can devote 40 years of his life just to prove that, and then I can just devote 4 years of my life into doing PhD and not give up.
That's interesting.
Yahan pe mujhe apne scenarios jo hai na ghumte hue nazar aa rahe PhD ke.
To ek question aur yahan par aaya hua hai hamare paas ke ज़ारा पूछती हैं, प्लीज कैन यू गाइड मी अबाउट द मास्टर्स स्कॉलरशिप, क्या आप उनको हेल्प कर सकते हैं मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए.
राइट, ज़ारा अगेन ज़ारा इज आल्सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली बैचलर्स कंप्लीट किया है एनईडी यूनिवर्सिटी से इन अप्लाइड फिजिक्स. सो फर्स्ट कांग्रेचुलेट ज़ारा, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट देयर आप लोगों की कन्वोकेशन पे. मास्टर्स स्कॉलरशिप अगेन अमेरिका की जो स्कॉलरशिप है वो फुलब्राइट ही स्कॉलरशिप है मेनली. आपको फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है इफ यू वांट टू कम थ्रू दैट स्कॉलरशिप टू अमेरिका. अगेन आई डोंट नो इफ आई शुड से अ ड्रॉबैक और व्हाट. फुलब्राइट स्कॉलरशिप का ये है कि after completion of your studies, you cannot stay in the United States. You have to, aapko lazmi apne mulk wapas jana padta hai. Chahe aap PhD karne aaye ho yahan pe ya masters karne aaye ho. You, aapka jo contract hota hai, wo ye kehta hai ki aapko wapas jana padta hai. To ek wo scholarship hai. Lekin jo ye scholarship jis tarah pe main hu ki if you get accepted by any school in America independently, wo aapke favor mein zyada acha rehta hai, then it gives you more freedom ki aap apna PhD ya masters karne ke baad aap kitna zyada aap apne yahan pe reh ke bhi apne career ko pursue kar sakte hain. Agar masters ki scholarship nahi hai, but you have completed your bachelor's now, to aap direct PhD mein try karein. Agar aapko ho sakta hai aapko PhD mein admission yahan pe direct mil jaye.
Yahan pe ek aur question aaya hua hai. Give guidance to students about the visa interview as well, how to face mm-hmm. visa officer, what would be possible questions. So ye to bahut specific hota hai mere khayal mein, case specific hota hai.
बिल्कुल केस स्पेसिफिक होता है.
मैं चाहूंगा एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि ये बोला जाता है कि यूएस का जो वीजा होता है उसके अंदर आपका सोशल मीडिया भी जो है वो मॉनिटर हो रहा होता है, और कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं कि हमसे पासवर्ड तक मांगो और हमारी फेसबुक की जो है वो वॉल चेक की.
अच्छा, मेरा सोशल मीडिया इतना है नहीं लेके, मैं सिर्फ एक ट्विटर पे हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है. इन फैक्ट आई डोंट नो इफ आई शुड से इट ओवर हियर और नॉट. जब मेरा ये इंटरव्यू हो गया था, जब मैं अपना यूएस वीजा इंटरव्यू दे के आ गया था काउंसलेट पे, तो उसके अच्छा दिस इज द थिंग दे हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ मोस्टली 80% इन 80% केसेस के वो स्टूडेंट्स को जो वीजा है वो फॉरन नहीं देते, दे पुट देम इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक्स. और यहाँ पे आई वुड लाइक टू अगेन मेंशन, जो शुरू में मैंने बात की थी कि फिजिक्स के अंदर रहते हुए आई वॉज टोल्ड कि न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें आप अमेरिका जाके रिसर्च नहीं कर सकते, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई. डेटा साइंस, आर्टिफिशियल, आई मीन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो ऐसी फील्ड्स हैं जो अमेरिका की सोवरेनिटी के लिए कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर उनको लगे कि you know, mm-hmm. countries like China, Russia, Iran, up aise countries se agar aa rahe hain aap PhD karne, or for example field like nuclear agar aap usme research karne ja rahe hain, to of course they are gonna, you know, wo ek red flag aapke us pe aa jayega ki kya kar rahe hain aap pe. To select your fields jo bahut basic hain, kyunki like what I am doing right now is it's not too basic, but it's related to biophysics and computational physics combined. Going back to that question, what my brother has asked me, by the way, that's okay. My brother, jinhone sawal okay. pucha hai. To mujhse jo hai, unhone yahi pucha tha ki bhai aap kyun ja rahe hain, why have you selected this university in particular, jiska answer jo tha wo yahi tha ki it's offering the degree of PhD in PhD in applied physics, or main ED mein applied physics padha raha hu isliye. And then what are you going to do afterwards, is for financial aspects he related to pucha tha ki who's going to fund you, jo ki mere paas university ki taraf se jo offer letter tha usme likha hua tha they are going to take care of all my finances, and tuition fees kuch hai nahi, do jo living expenses hai wo university jo job hai teaching ki uski basis pe they pay you. तो ये बेसिक सवाल थे, ज्यादा कुछ था नहीं, उनके पास सारा डाटा था. सोशल मीडिया, यस, व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस इज दैट, तो ये इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया. आफ्टर अ वीक और टू और समथिंग लाइक दैट, मेरे वालिद साहब जो हैं वो फेसबुक पे हैं, और लेकिन वो अपना हम क्योंकि वी आर फ्रॉम कराची, तो वो अपना स्मार्टफोन जो है वो बाहर लेके नहीं जाते तो वो घर में ही रखते हैं अपना स्मार्टफोन जो है ना. तो एक दिन वो मेरे पास आए, कहते हैं मेरे फेसबुक पे जो है वो चेक इन्स में जो है वो यूएस काउंसलेट क्यों आ रहा है. एंड आई वाज सो शॉक, एंड मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आपके फेसबुक पे चेक इन्स में यूएस काउंसलेट क्यों आ रहे. एंड आफ्टर एन आवर और टू इट वाज ऑल गॉन, वो वहां से लाइव चेक इन से हट गया था खुद ही. सो जो हमने अखज किया वो यही किया कि प्रोबेबली दे गॉट इनटू माय फैमिलीज फेसबुक accounts to check ke sari cheez social media ki.
To yahan par
haan fazan continue karo.
Haan, main isko yahan par isko is tarike se kya bolte close karta hu is question ko ki bhai ध्यान से जो भी पोस्ट कर रहे हैं आप, जरा जब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सोच के पोस्ट किया करें, ऐसे ही जो है ना वो कुछ भी नहीं पोस्ट कर दिया करें। जी शेर,
मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह समराइज करूंगा कि ज़ाहिर है उनकी एक सिक्योरिटी प्रोसेस है, उनका एक तरीका है, आप जिस मकसद के लिए बाहर जा रहे हो वो पढ़ाई है। हाँ, उस पढ़ाई की सराउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके उस डिसीजन पे अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, जैसे फैजान ने पॉइंट आउट किया। यहाँ पे मैं फिर से वही पुराना वाला क्वेश्चन, जिस तरह से आपने मुझसे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त डिस्कशन थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं उस वक्त सोचा ना इंटरप्ट करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने बायोफिजिक्स का मेंशन किया, क्योंकि मैं अब एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ फिजिक्स का, खुद भी मेरी पीएचडी फिजिक्स भी है, तो मैं उसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ। तो आप बायोफिजिक्स में क्या कर रहे हैं और बायोफिजिक्स असल में होती क्या है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है ना कि मेरी मोटिवेशन ही कैसे बनेगी फिजिक्स पढ़ने की या पीएचडी की तरफ आने की, तो वो मोटिवेशन ये है कि मैं सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्टेड हूँ जिसमें मुझे 4 साल लगा।
So far, I have completed my freshman year. यहाँ पे PhD का, again, PhD in America, physics में या किसी भी field में, it's comprised of 5 years at minimum, कम से कम 5 साल लगते हैं। और 5 साल का time frame इस तरह से कि first 2 years जो हैं वो आपके कोर्स वर्क के होते हैं, जिसमें आपको 10 courses करने होते हैं, along with your research work, आप किसी after first semester आप कोशिश करके जो by rule जो law by rule जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले साल के बाद किसी lab का part बनते हैं, but in my case because I got here last year spring 2020 और 2.5-3 महीने बाद you know this pandemic thing happened and everything got shut down, so being the only student जो spring में आया था, so I did not get that opportunity of exploring labs. So, but I got this email from the university के भाई आपके लिए ये एक opportunity है इसमें कि आप you know सारी चीजें बंद हैं, still you try to get in touch with the different professors जिनके पास lab में openings हैं. So I did not know कि what should I do for my PhD back then last year in the summer, but then I started exploring different labs and I met this professor जो जिनके साथ मैं अब काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर डिमित्री वरोनिन, ही इज बेसिकली फ्रॉम रशिया बट इनकी सारी तालीम जो है वो यहाँ अमेरिका की है। सो व्हेन आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिज लैब एंड सो हैविंग दैट यू नो बैकग्राउंड इन द लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनका काम जो बायोफिजिक्स और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रल एनालिसिस एंड एवरीथिंग कम्बाइन, तो मैंने कहा आई विल बी मोर फिट फॉर हिज लैब because I have the background in that field. Then I started, you know, going to the lab and I started exploring the kind of work they were doing and all that. So what they do is, or they, with they, I mean like all of us, is that we have biological samples, like cancer samples mainly. Because University of South Florida के अंदर जो है we have this huge cancer center जो कि Tampa General Hospital के साथ भी you know associated हैं हम, University of South Florida जो है, तो University of South Florida का medical program जो है largely वो बहुत strong है, so we have this huge cancer center called Moffitt Cancer Center here in America. Moffitt Cancer Center जो है वो all across America मौजूद है, तो in Tampa we have it at USF. So और cancer जो है वो पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में भी बहुत common है और all sorts of cancers are you know यहाँ पे exist करते हैं, और cancer जो है वो हम सबको पता है कि it's you know it's a lethal disease और एक दफा किसी को लग जाए तो it's very hard to get out of it or chemotherapy का process. So as a physicist, what we do is we have those cancer samples, like black, right now, jo professor ke paas, my professor ke paas jo samples hain, wo hain ovarian cancer cells, and we have breast cancer cells. So using atomic force microscopy, what they do is they analyze and study those cancer cells using the atomic force microscopy. Now, jab meri apne professor se let's say four months ago ek meeting ho rahi thi, you know, and he was like I would like you to do something else. ठीक है, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ और मैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है मेरे पास और हम कैंसर सेल्स पे काम कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग, बट आई वांट यू टू डू समथिंग एल्स सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम यू टू. एंड ही वाज लाइक हाउ अबाउट कंबाइनिंग दिस विद मशीन लर्निंग. और मशीन लर्निंग इज समथिंग जो एक यू नो मेरे मैं बचपन में कभी अंडर ग्रेजुएट में आई लर्न सी शार्प सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेसिकली कुछ एनडी में रहते हुए कुछ अपने 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 खुद जो है वो पाइथन पे पाइथन सीखी थी मैंने. सो व्हेन ही टोल्ड मी दैट एंड आई रियली लाइक द आइडिया के या इट्स अ ग्रेट आइडिया लेट्स कंबाइन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी विद मशीन लर्निंग एंड सी हाउ दोस टू कैन गेट अलोंग वेल. एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन रिसर्च नॉट रिसर्च बट सर्च सर्चिंग रिसर्च पेपर्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक and I found that it's an evolving field and people have recently started combining atomic force microscopy with machine learning, you know, algorithms bana ke or uski different algorithms ki basis pe analysis of the SAM cancer cells. So that's the main idea. We are combining biophysics with computational physics in which we will be doing machine learning.
Nice. फैजान यहाँ कुछ ऐड करना चाहोगे तुम
या मैं questions लेना चाहूँगा
क्योंकि questions लेने चाहोगे दोबारा से
तो काफी अच्छा experience है आपका और ये field जो है combination जो है machine learning क्योंकि machine learning is self booming पे और machine learning मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ mathematics ही है और उसको थोड़ा सा जो है वो advance करके जो है वो fancy अटैच कर दी गई है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा. तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग. फजल अब्बास पूछते हैं कि इज इट नेसेसरी टू हैव जॉब एक्सपीरियंस बिफोर पीएचडी, क्या आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए?
मेरे सुपरवाइजर जो कराची यूनिवर्सिटी के थे प्रोफेसर जहीर, उनके बेटे जो है वो यहाँ पे अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद right after completing his bachelor's from Karachi University in physics, उन्होंने apply किया और वो University of Delaware में उनको acceptance मिली है पूरा इसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पे हूँ. तो as a right after graduation, right after doing your bachelor's basically, आप without having any job experience, yes, you can apply for your PhD. And but again, it goes down to your expertise, like in a sense that aapka jo CV hai, aapki jo profile hai, and how good you do in the interview, wo sare factors ki basis pe jo hai aap apply kar sakte hain. You don't have to necessarily have the job experience.
Okay.
To aur dusra question thoda sa jo hai wo not about US but Australia. To iske mamle mein kuch aap roshni dalna chahe.
ऑस्ट्रेलिया जो है वो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ क्या कहते हैं हमारे काउंसलर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स काउंसलर्स पाकिस्तान में दे कैनेडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी उसके लिए. ऑस्ट्रेलिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है बट जितना मैंने अपने तौर पर जब मैं देख रहा था डिफरेंट अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा था तो बाकी दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आपको सुपरवाइजर की तरफ से एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, यू नो किसी लैब को ज्वाइन करना होता है और प्रोफेसर की तरफ से आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए.
सही.
तो यहाँ से मैं फिर से टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट की तरफ आऊंगा. जैसे आपने मेंशन किया उसमें मैं थोड़ा सा एक समराइज करूँ. आजकल की कोई भी फील्ड है, मैं इवन यहाँ पे बिजनेस फील्ड को भी मतलब इंक्लूड करूंगा, तो अगर आप बिजनेस के फील्ड में भी हैं और ये हम बार बार सुनते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डेटा साइंस ये इतना इंटीग्रल पार्ट होती जा रही है हर फील्ड का, क्या अगर आपको प्रोग्रामिंग की नो हाउ नहीं है, भले से आप फिजिक्स में हो भले से आप इंजीनियरिंग में हो भले मतलब मैं तो अब ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स को जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है. लाइक आई वॉज अमेज मेडिकल डॉक्टर जो MBBS कर रहा है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या काम करना पड़ेगा. तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जैसे ये बायोफिजिक्स का आपने मेंशन किया, इसी से एक रिलेटेड फील्ड चल रही है आजकल, जो वो फील्ड भी फिजिक्स वाले ही बना रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर्स के लिए है, तो वो मेडिकल फिजिक्स है जिसमें वो ऑन हैंड जो जॉब्स होती हैं हॉस्पिटल्स की उसके अंदर किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स का काफ़ी एलिमेंट आ जाता है। तो उनको भले से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती, वो एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो उनको डेटा निकाल के दे रहा है, लेकिन क्योंकि वो उस चीज़ से डील कर रहे हैं डेली, तो उनको वो पाइथन सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पेशेंट की हिस्ट्री है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकता उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन वो उसमें हो ये रहा है कि जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो, जैसे आपने एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी का एनालिसिस लगाया, तो वो पेशेंट की हिस्ट्री थ्रू पाइथन उस वाले सेक्टर में जा रही है जहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा है, उस पर वो सब कुछ परफॉर्म हो रहा है, फिर वहाँ से घूम के दोबारा डॉक्टर के पास आ रही है। मतलब डॉक्टर जस्ट इन क्लिनिक में बैठा हुआ है, उसके पास कुछ टेस्ट रिजल्ट हैं पेशेंट के, वो जाते हैं फिजिसिस्ट की तरफ एक ही प्रोग्राम के थ्रू, और एक ही प्रोग्राम के थ्रू घूम के उसके पास आ जाते हैं। तो मतलब अब डॉक्टर्स को भी पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है। तो जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है आगे, तो मेरे ख्याल में तो हर फील्ड वाले को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जा रही तो उसको अपने तौर पर तो पाइथन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, और है भी बहुत आसान। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगा कि फिजिक्स की सिग्निफिकेंस जैसे आपने बताई ना बायो के अंदर, जैसे कैंसर रिसर्च है, तो ये एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है अभी, खास करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर आप कोई भी चीज़ अभी एज अ बैचलर्स, अगर कोई यूथ जो अभी बैचलर्स की तरफ जा रही है वो ये देख रही है हमारी पॉडकास्ट, तो वो अपनी फील्ड को इस तरह से प्लान कर सकती है कि वो इवेंचुअली लैंड करे बायो साइंसेस की तरफ, फ्रॉम द इंजीनियरिंग, फ्रॉम द मेडिकल साइंस और फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, क्योंकि इसकी रिसर्च बहुत ज्यादा बूम कर रही है। तो ये एक बहुत मोटिवेटिंग और हाइलाइटिंग फैक्टर है कि हम लोग पाकिस्तान में इन सारी फील्ड्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अब हम इसको यहीं समराइज करते हैं हमारी पूरी पॉडकास्ट को। तो फैजान, तुम कुछ कहना चाहोगे?
मेरा ये था कि क्योंकि मैं रिसर्च से थोड़ा दूर हूँ और मैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे जाता हूँ, और ये कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और जो बायोफिजिक्स के आपने बताया जिस तरीके से वो बूमिंग पे जा रही है, तो रिसर्च का और इंजीनियरिंग का जो फेज होता है ना, फेज डिफरेंस अगर मैं बोलूँ आप लोगों की रिसर्च की टर्म में, तो वो कम से कम भी 30-40 साल का होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो इक्वेशन हमने कम्युनिकेशन की जो क्या बोलते हैं लॉज हमने 40 साल पहले पढ़े थे, वो अब इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं और हम लोगों के पास एक वो प्रोडक्ट की फॉर्म में चीज़ें आ रही हैं। तो इसी रिसर्च को जब आगे जाके हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये साइकिल जो ये फेज डिफरेंस है ये छोटा होता जा रहा है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती जा रही है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अब हम आपकी रिसर्च सुनते तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि हाँ अब ये आने वाली चीज़ क्या होगी और वो किस तरीके से जो है हम उसको एक प्रोसेसिंग वाइज देखेंगे। तो जो लोग टेक्निकल साइड पे आना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरा ये है कि देख लें ये चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं, सही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपने आप को उस लिहाज से प्रिपेयर करें, वो स्किल एक्वायर करें और देखें आप उस चीज़ के किस तरीके से जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। ये मेरा जो है वो कंक्लूजन है इस पॉडकास्ट का।
दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे कुछ अपने एंडिंग रिमार्क्स ऐड करना चाहें, मतलब थ्रू आउट द हमारी पॉडकास्ट और जितनी हमने बातें डिस्कस की आज।
पहले तो अगेन वंस अगेन थैंक यू फैजान, थैंक यू शेरी फॉर गिविंग मी दिस अगेन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब से मैं आया हूँ यू नो आई कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान के आप किस तरह से स्कॉलरशिप पे मैं कर गए हैं हमें भी बताएं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव, बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन थी दिस होल पॉडकास्ट। And what Faizan has said is I completely 100% agree with that. Ke, and you also, Sherry, ke, make this as if whatever you're studying right now, Pakistan mein ho ya kahin bhi ho, make learn programming, learn Python, and it's an skill basically. Jo aapki zindagi mein kaam aayega. And if I can go back in time, I would advise myself as a, you know, 18-year, 19-year-old teenager to learn computer programming language too.
programming.
तो यहीं पे फिर इसको हम खत्म करते हैं. इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएंगे फ्यूचर पॉडकास्ट में.
थैंक यू सो मच.
उसमें फिर हम कोशिश करेंगे कि डीपली बायोफिजिक्स के बारे में डिस्कशन कर, मतलब जिस तरह आपकी फील्ड है वो काफी सुनने में तो लोगों को लगता है यार ये AFM क्या चीज है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारी आज की दुनिया का, जिसने बहुत सारी चीजों को शेप किया है मेडिकल साइंसेज में भी, टेक्नोलॉजी में भी. तो इस पे भी एक हमारी पॉडकास्ट में इस पे भी स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा.
इनफैक्ट बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत वक्त, एक घंटा पता ही नहीं चला कहाँ गया. और मैंने तो इतना सोचा हुआ था कि अपने यू नो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एल्गोरिथम्स और किस तरह से हम कंबाइंड इमेज क्लासिफिकेशन किस तरह से हेल्प करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली सारी चीजों पर बात नहीं की.
बिल्कुल बिल्कुल
नहीं, उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे.
से बात होना बंद है और ड्यू है, और इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के और इस टॉपिक की इम्प्लीमेंटेशन और इससे हम क्या पाकिस्तान में कर सकते हैं उसके ऊपर बात करने के लिए इंशाल्लाह आपको दोबारा बनाएंगे. क्योंकि मेरा हमेशा से और शेरी का भी यही गोल होता है कि हम पाकिस्तान को सामने रख के और किस तरीके से हम वहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज के जरिए, ही हमारा जो है वो बेसिक मकसद है. तो इसी बात पे जो है वो हम यहाँ पर पॉडकास्ट को एंड करते हैं. And this is a short story. Thank you very much for today.
Thank you very much. Love, Fest.